الحمد لله وكفى الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. پچھلی کلاس میں کہاں بات چھوڑی تھی؟ کون بتائے گا؟ جی سعد بھائی. عمر حضرت کی شہادت ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی، اور ہم نے پھر دوبارہ سے وہ اشعار پڑھ کے آپ کو سنائے تھے جو کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. اور کوئی فرحان، آپ بھی کچھ بتائیں. لولو فیروز. ہاں، اس نے جو ہے حضرت عمر رضا ان کو شہید کیا کر کے. وہ کہاں شہید کیا؟ نماز کے دوران مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور ریاض الجنہ کے اندر، یعنی جو زمین کے اندر جنت ہے، وہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مقام نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسی قدردانی فرمائی عمر رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل حوالے کر دیا تھا، اور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیل اللہ. حضرت عمر فاروق نے پڑھا تھا، پھر وہ شہید ہو گئے تھے. ہاں، یہ بھی اگر لکھا ہوا ہے کہیں پہ کہ انہوں نے اس وقت بھی یہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے، یا یہ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے راستے میں یہ دعا مانگی تھی جب مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر کو اپنے حبیب علیہ السلام کے شہر میں بنا دیجئے. انہوں نے تو صرف شہر کی دعا مانگی تھی، شہر میں تو بہت سارے مقامات تھے، ان کو قبر کی جگہ مل سکتی تھی، اور شہادت تو ان کو کہیں بھی مل سکتی تھی، کسی بھی طریقے سے مل سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو بہترین جگہ تھی وہاں پہ شہادت بھی نصیب فرمائی، اور جو بہترین مقام تھا، اس سے زیادہ اچھا مقام کوئی نہیں، وہاں پر ان کو قبر کی جگہ بھی نصیب فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسد مبارک سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک سے قبر میں جو مٹی لگتی ہے نا، اس مٹی کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی زیادہ بلند ہے. اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی زیادہ اس مٹی کا مقام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگتی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے جسم سے بھی وہی والی مٹی لگ رہی ہے نا. نبی علیہ السلام ہیں، ادھر جو بکر صدیق ہیں، ادھر جو ہے عمر فاروق ہیں، مٹی جو ہے وہ ایک ہی ہو گئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی کیسے تھا؟ نبی علیہ السلام کی جس مٹی سے بنایا، اسی مٹی سے جو ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اس میں سے جو باقی مٹی باقی بچ گئی، اس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا. تو پھر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جس خمیر سے بنایا تھا وہیں پہ واپس پہنچی. کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا مکمل. تو اب ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ انبیاء والی کلاس کے اندر یہ بات آج سنی چکے ہیں، تو چونکہ اب ہماری بھی ترتیب میں یہ بات آ رہی ہے، تو اسی کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، یعنی پڑے ہوئے تھے، اب تو بس جان نکلنے ہی والی تھی، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آگے خلیفہ کی نامزدگی کے لیے ایک کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے، 5 افراد کی یا 6 افراد کی کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے، اس میں کون کون تھے؟ جیسے ابھی آپ نے سنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، تو ان کا تو انتقال ہو گیا تھا نا، ہاں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، तो ये 5 हजरात थे, अगर कोई छठा था तो मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, वैसे भी नुमान साहब ने 5 ही बताए थे। तो इनमें से फिर तलहा और जुबैर, अच्छा ये सारे के सारे कौन थे, अशरा मुबशरा सहाबा थे, ठीक है, सबको जो है वो जन्नत की बशारत मिली हुई थी। तो इनसे अच्छा एक अजीब बात कही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम जो लोग हो ना, ये जो कमेटी है, ये आपस में डिसाइड करके किसी को खलीफा बना ले, सही है, अच्छा बाकी जितने लोग हैं वो उसके हाथ के ऊपर बैत कर लें, ठीक है, कमिट कर लें कि हाँ आप हमारे खलीफा हैं, हम आपकी आमन्ना व सद्दकना, हम आपकी बात मानेंगे, उसकी हम तस्दीक करेंगे और उस अतात करेंगे, बल्कि ठीक है अतात करेंगे हम आपकी, ठीक है, आम ईमान तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लेके आया जाता है, लेकिन अतात हम आपकी करेंगे क्योंकि आप तो खलीफा हमने मान दिया है। अच्छा अगर कोई ना करे बैत, इनमें से कोई अगर उसके हाथ पे ना करे बैत, उसको क्या करना, उसको
अच्छा
उसको जिंदा मत छोड़ना, फिर उसको जिंदा मत छोड़ना, ठीक है ना, उसको कत्ल कर देना। वो जिंदा रहेगा ना तो फिर फसाद करेगा, और वो फसाद जो है ना वो कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है, पूरी मुमलिकत के अंदर फसाद हो जाएगा, खलीफा को नहीं तस्लीम किया जाएगा, और फिर आगे जाकर के वो हुआ, वो दूसरी रीजन से हुआ, लेकिन बहरहाल उमर अतान की जो बसीरत थी उन्होंने पहले से इस बात को भांपा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से किसी का भी ऐसे कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, अब्दुलरहमान बिन औफ ने उनको गोया के बड़ा बना दिया गया। तो पहले जो है वो तलहा और जुबैर अतान से पूछा गया, उनका जी हमें तो नहीं चाहिए, ठीक है हमें नहीं चाहिए खिलाफत, हमने नहीं बनना, और फिर जो है वो अब्दुलरहमान बिन औफ उन्होंने खुद जो है वो इन्वेस्टिगेशन यानी बाकायदा जो है वो लोगों से मशवरे करने शुरू किए, सहाबा इकराम से किए, उलमाए इकराम से किए जो वहाँ पे मौजूद थे, उन सब से मशवरे से जो है ना उन्होंने भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को तय कर लिया। अब एक रह गए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनसे भी पूछा कि अली आपका क्या ख्याल है, आपको कौन जो है वो ज्यादा मुस्तहिक नजर आता है। तो किताब में लिखा हुआ है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी जवाब दिया कि मुझे तो उस्मान ही सबसे ज्यादा मुस्तहिक खिलाफत के नजर आते हैं, ठीक है, तो सबका इत्तेफाक हो गया, और फिर उन्होंने हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ के ऊपर बैत कर ली। ठीक है, बैत करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो बाय यबीउ बैअन है, बेच देते हैं, यू सेल योर सेल्फ टू समवन, ठीक है, तो बैत बैत करने का मतलब होता है कि आप वादा कर लें, कमिटमेंट कर लें कि जी मैंने आपकी बात मानी, ठीक है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बैत की जाती है, उसमें फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप बात मानते हैं, जैसे जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में बैत की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि जिहाद में मैंने आपकी बात माननी है, आप अमीर हैं, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, ठीक है, जिहाद की बैत होती है। फिर बैत होती है खिलाफत की, जब खिलाफत के लिए किसी के हाथ पर बैत की जाती है उसका मतलब ये होता है कि मुल्की उमूर के अंदर हम आपकी मान के चलेंगे, हम अपनी देड़ ईंट की अलग मस्जिद नहीं बनाएंगे, अपना अलग निज़ाम नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी एक निज़ाम के तहत चलेंगे, आप हमारे खलीफा हैं। उसी तरीके से तरीकत की बैत जिसको कहते हैं, तसव्वुफ की बैत कहते हैं, तो उसमें भी किसी शेख के हाथ पे जब बैत की जाती है तो उस वक्त भी यही कहा जाता है कि जी हम अपनी इस्लाह के लिए, हम अपने तज़किया नफ्स के लिए आपकी बात मानेंगे, ठीक है, आप हमारी जिस तरह भी इस्लाह करेंगे हम उसमें आपको फॉलो करेंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बैतें होती हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बैत हो गई और इनको खलीफा ईमान वालों ने चुन लिया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के का मामला क्या था कि ये अशरा मुबशरा सहाबा में से भी थे, इनको मल्टीपल टाइम्स नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी थी। जी साहब,
साहब
और
और दो साहब का नाम क्या था जो करने के लिए
अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन, तलहा रजी अल्लाह तआला अन, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन, अली रजी अल्लाह तआला अन और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन, ठीक है। अच्छा उस्मान रजी अल्लाह अन के बारे में लिखा है कि इनका भी नसब जो है ना नबी अलैहिस्सलाम से ऊपर जा करके फिफ्थ जनरेशन में मिलता था, ठीक है, जैसे उमर फारूक खान का 9th जनरेशन में जाकर के ऊपर मिलता था, दादा परदादा उनके ऊपर उनके ऊपर उनके ऊपर 9th जनरेशन, इनका जो है वो 5th जनरेशन में जाके नसब मिलता था, यानी दादा बाप की तरफ से नसब चलता है, ठीक है। लेकिन इनकी एक और खास बात ये थी कि इनकी जो नानी थी ना, यानी इनकी अम्मी की अम्मी, वो कौन थी, वो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम की सगी बहन थी, बल्कि जुड़वां बहन थी, ठीक है, यानी ट्विन सिस्टर थी इनकी नानी। ठीक है, तो अब्दुल मुतलिब नबी अलैहिस्सलाम के दादा के दो औलादें एक साथ हुई थी, यानी जिसको ट्विन्स कहते हैं। तो वो एक अब्दुल्ला थे, ख्वाजा अब्दुल्ला, और दूसरे जो है वो थी उनका वो उस्मान बनी रतान की नानी बनी जा करके बाद में। ठीक है, उनकी बेटी हुई, फिर उनकी बेटी के जो है ये बेटा हुए उस्मान बनी रतान, उनका नाम रखा गया उस्मान। व्हाट इज द हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी बिहाइंड द सिलसिलाज ऑफ द तसव्वुफ? दिस इज नॉट द क्लास ऑफ तसव्वुफ बाय द वे, लेकिन हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी। इतने मुश्किल लफ्ज तो मुझे आते नहीं। खैर, तो हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी के लिए कुरान मजीद की चार आयतें हमारे लिए काफी होनी चाहिए वैसे, बहुत ही शॉर्ट अगर इसका जवाब दिया जाए कि अच्छा अजीब बात है, हुवल्लज़ी बअस फिल
अच्छा
उम्मीयीन, हुवल्लज़ी वो कि जिसने उठाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन। उम्मी किसको कहते हैं? जिसके
उसके पास नहीं
पास इल्म ना हो, जो पढ़ा लिखा ना, है ना, अनलेटर्ड अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करते हैं। तो अनपढ़ लोगों के दरमियान जिसने के उठाया, फिल उम्मीना, हुवा लजी बासा फिल उम्मीना
अच्छा
रसूलम मिनहु यतलु अलैहिम आयातिही व युजक्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को उठाया उम्मी, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी उम्मी थे और उम्मियों में उठाया गया। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सहाबा जो है वो अनलेटर्ड थे, नहीं, पढ़े लिखे भी थे। उमर फारूक रतान खुद जो है वो पढ़े लिखे थे, और भी कुछ सहाबा जो है पढ़े लिखे थे, लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सहाबा जो थे ना वो अरब, सारे अरब थे ना। और अरब जो है कंपेयर्ड टू यहूद और नसारा, अरब जो थे वो अनलेटर्ड थे। ठीक है ना, इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, इनके पास जो है वो एक बड़ा यानी जबरदस्त किस्म का, रंग बिरंगा किस्म का की तहजीब नहीं थी, इनकी ट्रेडिशन नहीं थी ऐसी कोई। ठीक है, तो इनमें नबी अलैहिस्सलाम को उठाया, तो उनका जो युज़कीहिम का काम था ना नबी अलैहिस्सलाम का, तो वो तज़किया, फिर क्या पता चला इन आयतों से कि तज़किया एक ऐसा अमल है कि जो कि किसी और को करना होता है। ठीक है, किसी और यानी जिस तरह इलाज डॉक्टर साहब करते हैं ना, इंसान खुद अपना इलाज कर तो सकता है, लेकिन गलत फहमियों की वजह से अक्सर जो है ना वो अपना नुकसान कर लेता है। गलत दवा खा लेगा, अपने आप को जो है फॉलो अप नहीं कर सकेगा, और जो है वो कोई और इस किस्म के मैसअप्स कर देगा। तो कर तो सकता है, जाकर के किताबें पढ़ ले और फार्मेसी में चला जाए, फार्मेसी से दवा लेकर के आ जाए, फिर दवा खाना शुरू हो जाए, लेकिन नज़ला खांसी के लिए तो चल जाता है, थोड़ा सा ज्यादा सिवियर किस्म की इलनेस हो जाए तो फिर वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो एग्जैक्टली यही मामला है, यही हिस्ट्री है, यही आइडियोलॉजी है। बहरहाल, जज़ाकुमुल्लाह आपके अच्छे सवाल का। तो इसमें फिर हजरत उमर फारूक रतान के बाद उस्मान रतान जो है वो बन गए खलीफा। अच्छा, नानी मुहतरमा का भी जिक्र हो गया। अच्छा, उमर उस्मान रतान जो है वो साबिकून अव्वलून में आते हैं। साबिकून अव्वलून जो बिल्कुल शुरू में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले थे। ठीक है, सबसे पहले जो दो मर्द थे एडल्ट मेल, वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। यंग मेल्स में तो उमर अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे ना, एडल्ट मेल्स में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लेकर के आए, मुसलमान हुए, तो उन्होंने क्या किया, वो काबतुल्ला चले गए और दनादन सजदे पे सजदे, दनादन, हमारे उस्ताद साहब कहते थे दनादन सजदे पे सजदे। तो अबू बकर सिद्दीक किधर गए? काबतुल्ला चले गए। चलो जी, अब तो मैं मुसलमान हो गया, अब तो बस इबादत ही इबादत, में किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी के अपने आगे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो किधर गए? वो भागे। वो किधर भागे? वो भागे अपने दोस्तों की तरफ, अपने चाहने वालों की तरफ। मैं जन्नत में जाऊं और अकेला, और मेरे दोस्त ना जाएं जन्नत में, ये कैसे हो सकता? मैं जहन्नुम से बच जाऊं अकेला और मेरे दोस्त जहन्नुम में चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दौड़ लगाई और गए अपने दोस्तों के पास, तलहा आ जाओ, जुबैर आ जाओ, ठीक है उस्मान आ जाओ, सही है। उस्मान, तलहा, जुबैर, इन सब ने बात मान ली, और भी चंद थे, पांच तो कम से कम थे जिन्होंने बात मान ली और फौरन मुसलमान हो गए। तो अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो उस्मान गनी रज रतान के भी इस्लाम लाने का सबब बन गए, ठीक है। उस्मान गनी रतान, उन्होंने कितना सवाब कमाया आगे हम पढ़ते रहेंगे, वो सारा का सारा सवाब जो उस्मान गनी रतान कमाते गए कमाते गए कमाते आज तक कमा रहे हैं। सुना था ना लास्ट पिछली क्लास के अंदर कि अभी भी वक्फ की बिल्डिंग जो है वो वक्फ उस्मान रतान जो है वो मदीना तैयबा के अंदर मौजूद है। जितनी कमाई मिल रही है वो सारी की सारी अबू बकर सिद्दीक रतान की झोली में जा रही है, ठीक है, क्योंकि सबब जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला बने थे। तो अबू बकर सिद्दीक रतान ने बुलाया और ये मुसलमान हो गए, साबिकून अव्वलून में। उस वक्त तक मुसलमान इतने भी तादाद में नहीं हुए थे कि दारे अरकम, वो जो छोटा सा एक घर था, तो उस घर में मिलकर के इबादत वगैरह किया करते थे, थोड़ी थोड़ी दीन की चीजें सीखा करते थे नबी अलैहिस्सलाम से। वो करीब ही हरम पाक से करीब ही जो है वो घर था। तो वो घर कब मुसलमानों का इबादत खाना बना था या मीटिंग रूम बना था, जब थोड़ी तादाद में मुसलमान हो गए थे ना। उस्मान रतान उस वक्त मुसलमान हुए थे जबकि दारे अरकम भी नहीं बना था, यानी उस वक्त भी जो है वो मीटिंग रूम के तौर पर वो सेट नहीं हुआ था, यानी इतने इब्तिदा में वो मुसलमान हो गए थे, ठीक है। अच्छा, उनके एक चचा थे, चचा का नाम था हकम बिन आस। तो उसने जब देखा कि ये मुसलमान हो गए, यानी अपने बाप दादा का दीन जो है वो छोड़ करके एक नया दीन है, बुतों को छोड़ दिया, ये हमारे ट्रेडिशंस को छोड़ दिया, हमारी रिवायत को छोड़ दिया, और एक नए छोटे हमारे शहर के जो है ना वो एक उम्मी, राइट, हमारे शहर के जो है वो एक सीधे साधे इंसान जिसके पास, कल सुना था ना, ना बाग है, ना नहर है, ना ये है, ना वो है हाँ, और इल्म भी नहीं है, माल दौलत तो दूर की बात, इल्म भी नहीं है, उनकी बात मानना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो चचा ने जो है वो इनको बंद कर दिया, रस्सी से बांध दिया और कहा कि मैं उस वक्त नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम जो है ना वो सही दीन में वापस ना आ जाओ। उसके नजदीक वही सीन सही सही दीन था। तो उस्मान ने कहा कि आप कुछ कर लें, मैंने तो नहीं, अब तो नहीं छोड़ना मैंने नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो चचा ने जो है ना वो चंद दिन तक उनको बांधे रखा और बिलाखिर छोड़ दिया कि यार नहीं मानते, ये तो बिल्कुल ही ना, ये ही इज अ लॉस्ट केस, जरा कहते हैं ना आजकल भी, ये तो लॉस्ट केस है, ये तो अब, ठीक है। तो चचा ने भी बिलाखिर हार मान ली और उनको जो है वो छोड़ दिया। उस्मान गनी अतान के बारे में सभी जानते हैं कि ये बहुत ही नफीस किस्म के इंसान, ठीक है, और इनकी नफासत जो है उसकी शायद एक बड़ी वजह ये भी थी कि बड़े जहीन किस्म के ये बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो इनको जो है ना वो बिजनेस ट्रिक्स जबरदस्त किस्म की आती थी, या अल्लाह ताला ने जहानत ऐसी दी थी, ऐसे फैसले करते थे, अल्लाह ताला उसके अंदर जो है वो बरकत डाल देता था, इनको फायदा हो जाता था अपने बिजनेस के अंदर। तो बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर इंसान थे ये, ठीक है, और इसका असर जो है वो इनके फिर लिबास पे और इनके तौर तरीकों के ऊपर उसका असर भी था। तो बहुत ही नफीस इंसान थे। तो उस्मान गनी अतान की एक एक करके हम क्वालिटीज पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। इनकी आखिरत के एतबार से सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो क्या है कि इनको नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मरतबा जो है ना वो जन्नत की बशारत मिली। तो उसका एक वाक्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं उमर फारूक खतान के किस्से में, कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम एक बाग में मौजूद थे और उस बाग के अंदर एक कुआं था। तो कुएं की जो मुंडेर होती है, जो उसका सराउंडिंग एक वॉल सी बना देते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ना, गर्मी का वक्त था, तो नबी अलैहिस्सलाम उसके मुंडेर पे बैठे हुए थे और पांव अंदर की तरफ डाले हुए थे और पानी के अंदर, जैसे पानी से ठंडक आती है ना, तो ठंडक फील कर रहे थे। तो वहां पर हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला भी मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि बाग का दरवाजा, क्योंकि प्राइवेट बाग होते थे ना, तो बाकायदा उनकी दीवार भी होती थी, दरवाजा भी लगा होता था, तो बाग का दरवाजा बंद कर दो और अगर कोई आए ना तो मुझसे पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलना उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद खटखट हुई दरवाजे के ऊपर, तो पूछा, पूछवाया कौन, अबू बकर, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, उन्होंने मैं आने दो उसे, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक अंदर अंदर तशरीफ लाए और वो भी एग्जैक्टली उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही मुंडेर के ऊपर बैठ गए और अपना पांव जो है वो अंदर कर लिया उस कुएं के। फिर थोड़ी देर बाद फिर खटखट, कौन, उमर, आने दो उसको, ठीक है। तो उमर अतान भी तशरीफ लाए और वो नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी तरफ बैठ गए। सही है। अब इधर ये बैठे हुए हैं, इधर ये बैठे हुए हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से बैठे हुए हैं। अब फिर उसके बाद खटखट हुई। अच्छा, जब ये आ रहे थे ना, तो उस वक्त जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और भी चीज पूछते थे कि कौन है। जब नाम बताया जाता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उसको आने दो और उसको जन्नत की बशारत दे दो। ठीक है, तो अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उनको भी बशारत मिल गई। तीसरे फिर उस्मान रहता ना आए, कहा उसको भी आने दो और उसको भी जन्नत की बशारत दे दो। ठीक है, तो उस्मान रहता अंदर तशरीफ लाए, तो अब जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के इधर भी जगह खत्म हो चुकी, इधर भी जगह खत्म हो चुकी। तो इन्होंने अपनी जहानत जहानत अड़ाई कि भाई मैं नबी अलैहिस्सलाम के ना सामने जा करके बैठ जाता हूँ, कि मुझे आप सल्लम के बिल्कुल यानी वो जगह तो अभी भी खाली है, तो वो सामने जा करके बैठ गए। ठीक है, अक्रॉस द वेल। सही है, तो इसके ऊपर फिर हजरत ने यहाँ पे भी लिखा है कि यही तरतीब जो है इन हजरात की, फिर जो आलम बरजख वाली जिंदगी है ना उसके अंदर भी इनको यही तरतीब मिली कि ये दोनों तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं, और उमर उस्मान हजरतान जो है वो गोया के बिल्कुल उस तरफ जा करके। सही है, यानी एक तरह से देखा जाए तो वो सामने ही बनता है। अगर आप देखें कि रोजे मुबारक के अंदर कब्र मुबारक की कैसी डायरेक्शन है, ऐसे है ना, इधर तिबला है। सही है, तो ऐसे डाला जाता है और चेहरा मुबारक जो है वो किबला की तरफ होता है, तो इस तरह से लेटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वक्त सिद्दीक रहता, फिर उमर फारूक रहता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन सी बनाए ना, तो ये किधर जाती है, ये रियाजुल जन्ना सॉरी जन्नतुल बकी में जाती है। और जन्नतुल बकी के अंदर भी जो उस जमाने में बिल्कुल फार एंड था, असल में उस जमाने का जो जन्नतुल बकी था वो छोटा सा था, तो उस्मान रतान की जो कब्र बनाई गई थी ना, जो आज भी बड़ी प्रोमिनेंट कब्र नजर आती है, तो वो जन्नतुल बकी के बाहर बनाई गई थी। ठीक है, बाद में उसको जन्नतुल बकी के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो उनकी जो कब्र है वो गोया के बिल्कुल अक्रॉस है वहां के, जैसे कि कुएं में बिल्कुल अक्रॉस बैठे थे आकर के। बहरहाल, अच्छा, हयाए उस्मान, ये भी आपने बहुत सुना होगा, उस्मान रतान जो है वो हया में यानी शर्म और हया पाक दामनी जिसको कहते हैं ना, वो उनको बहुत थी। अल हयाउ शोबतु मिनल ईमान, नबी रसूल फरमाया कि हया ईमान के शोबों में से, ईमान की शाखों में से एक शाख है। ठीक है, ईमान के डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है। तो उस्मान रतान की हया सबसे ज्यादा थी। इसका पता जो है नबी रसूल के अकवाल से भी चलता है कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में लेटे हुए थे। ठीक है, तशरीफ फरमाते लेटे हुए थे किसी तरह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहबंद था ना, जो यानी जिस तहबंद आप लोग तो जानते होंगे, जो चादर जिस तरह से अहराम के अंदर जो नीचे की चादर होती है वो तहबंद की शक्ल में पहनी जाती है। ठीक है, तो वो जो चादर पहने हुए थे ना, वो नबी अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक से कुछ उठी हुई थी। ठीक है, अब सतर तो नहीं खुला हुआ था, लेकिन पाओं का अच्छा खासा एरिया जो है ना वो गोया के एक्सपोज था, नजर आ रहा था पाओं को। अच्छा, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान दाखिल हुए इजाजत लेकर के। तो नबी अलैहिस्सलाम जैसे लेटे हुए थे ना और चादर जो है वो उठी हुई थी अपने पाओं के ऊपर से, वैसे ही लेटे रहे, कुछ नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उमर फारूक रतान दाखिल हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम जैसे लेटे हुए थे वैसे ही लेटे रहे, बिल्कुल मूव नहीं किया। इतने में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए बाद में। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम उठे और उस चादर को जो है ना वो पूरे पाँव के ऊपर कवर कर लिया, छुपा लिया अपने पाँव को। ठीक है, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो पीछे से देख रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बाद में नबी अलैहिस्सलाम पूछा कि आपने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए तो कुछ भी नहीं किया, और जब उस्मान आए तो आपने जो है वो अपने आप को बिल्कुल से ठीक कर लिया, अपनी चादर को ठीक कर लिया, पाँव को जो है वो छुपा लिया। तो नबी अलैहि सल्लम ने जवाब दिया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, कि क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं कि जिससे के अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी जिससे हया करते हैं मैं उससे हया ना करूं। ठीक है, तो अगर मैं उसी तरह से लेटा रहता ना, तो उस्मान जो है ना वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था मुझे। ठीक है ना, वो तो या तो शायद वापस चले जाते या जो है वो कुछ और हो जाता। वो कहता ना, बहुत ज्यादा शर्म आती है तो इंसान का जो रंग है वो सुर्ख हो जाता है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने गवाना ना किया बल्कि अपनी चादर को जो है वो ठीक कर लिया। अच्छा, फिर इनकी एक और बड़ी खास बात क्या थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तआला ने तौफीक दी कि इन्होंने दोनों हिजरतें करी। ठीक है, पहली हिजरत अपनी बीवी हजरत कौन थी, उस्मान गनी की अहलिया मुहतरमा हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी थी, तो उनका तो अबुल आस रजी अल्लाह ताला बाद में मुसलमान हो गए थे तो उनके साथ निकाह हो चुका था। दूसरी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया था। तो जब हबशा की हिजरत का हुक्म हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबों को कहा, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह और रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं इन्होंने हबशा की हिजरत कर ली। ठीक है, फिर वहां से ये वापस आए और फिर इन्होंने मदीना तैयबा की भी हिजरत करी। ठीक है, तो ये दो हिजरतें करने वाले सहाबों में से थे। इनकी शादी रुकैया रज़ी अल्लाह से हो चुकी थी। एक दफा हजरत उसामा बिन जैद रज़वान जो छोटे से बच्चे थे उस वक्त, ठीक है, जैद रज़वान नबी अलैहिस्सलाम को मुंह बोले बेटे, और उनके बेटे उसामा रज़वान तो वो और भी बहुत छोटे से, लिखा है कि जी 2-3 साल के ही थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना 2-3 साल के तो नहीं, 3-4 साल का लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि मुझे ना एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने कोई खाना पका था तो वो खाना दे करके भेजा कि मेरी बेटी रुकैया के घर में दे करके आओ। ठीक है, तो उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं वो खाना लेकर के गया ना तो मैंने घर में देखा कि इतने छोटे से थे, जाहिर पर्दा वर्दा कहाँ, वो तो बिल्कुल ही छोटे से बच्चे, जब अजी फरमाते हैं कि हर घर का मल्टीपल वीजा अवेलेबल होता है, जहाँ जैसे आपके छोटे वाले हैं तो मुस्तफा भाई जहाँ चाहो घुस जाओ, आंटियों में ही रहते हैं ज्यादातर, तो उनकी बातें फिर आंटियां ज्यादा बताती हैं हमें। तो गए तो हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा अनहा और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु जो है वो चारपाई के ऊपर बैठे हुए थे। तो ठीक है, तो इन्होंने जो है वो उनको देखा, उनको जो है वो खाना दिया और फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि मुझे बताओ सामा कि क्या तुमने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा देखा, इतना खूबसूरत कपल तुमने कभी देखा। तो उस वक्त उसामा फरमाते हैं कि हाँ मैंने सोचा तो मैं वाकई कि उस्मान रतान से ज्यादा खूबसूरत कोई मर्द मुझे नहीं नजर आता और रुकैया रताना से ज्यादा खूबसूरत कोई औरत नजर नहीं आती, गोया कि दोनों एक दूसरे से भी ज्यादा बढ़कर खूबसूरत है। ठीक है, तो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी अपनी औलाद के साथ और ऐसे जो है ना वो उनका जिक्र भी फरमाया करते थे। अच्छा, गजवा बदर के अंदर क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मुसलमानों से कहा था कि भाई काफिला आ रहा है कुरैश का और उसको जो है ना वो हमने लूटने के लिए जाना है, उन्होंने हमारे इस पर कब्जा किया हुआ, अल्लाह ताला का हुक्म भी है काफले को जा करके लूटना है। ठीक है, तो उसमें जो है ना फिर जल्दी 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 निकलो निकलो निकलो, तो अब लोग जो है वो बस जिसके हाथ जो आया वो निकल रहा था, तो उस्मान गनी अतान भी निकलना चाहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जाएं और इसमें शामिल हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान अतान से फरमाया कि उस्मान तुम्हारी बीवी बीमार है तो तुम अभी हमारे साथ ना जाओ, ठीक है, तुम अपनी बीवी की तीमारदारी करो। तो उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं फिर आपके साथ इस सफर से महरूम हो जाऊंगा, जिहाद को तो वैसे पता भी नहीं था उस वक्त कि क्या होगा आगे जा करके, लेकिन आप जहां जा रहे हैं अगर वहां पे जिहाद हुआ तो मैं उससे महरूम हो जाऊंगा, आपकी सोहबत से महरूम हो जाऊंगा। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम महरूम नहीं होगे, अल्लाह ताला तुम्हें उसका सवाब अता फरमाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सवाब है वो कल क्या सुना था, याद है किसी को, कल भी बात हुई थी इसमें, क्या अल्फाज सवाब के बारे में बताए थे, बल्कि बंदगी, सवाब किस वजह से मिलता है, बंदगी की वजह से मिलता है। तो बंदगी क्या है
सजदे करना बंदगी
जी, ठीक है, सजदे करना बंदगी नहीं होती, हुक्म मानना बंदगी होती है। ठीक है, और दूसरी भी एक थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा, सजदे की मिसाल दी थी और दूसरी क्या थी, तो शैतान के सजदे वाली नमाज रोजा नहीं, कल जो बात हुई, बात मानना बंदगी है, कल खैर याद नहीं आ रहा मुझे खुद ही क्या कहा था मैंने। तो उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहना, ठीक है ना, ये बंदगी नहीं है बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना बंदगी। ठीक है, तो हुक्म यह है कि तुम इधर ही रहोगे ना तो तुम्हें बंदगी का सवाब मिल जाएगा, और मकसद तो सवाब हासिल करना है, मकसद खाली अपनी मर्जी पूरी करना तो नहीं है। अच्छा, हुआ यही कि नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे कहा था, हाँ तौहीद की मिसाल कर दी थी कि वो भाई शैतान ने कहा था ना कि मैं तो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करूंगा, मैं तो अल्लाह की इबादत करूंगा, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि भाई सजदा करो, उसने कहा नहीं मैं तो अपना, ठीक है, तो फिर वो मारा गया, हुक्म नहीं मारा उसने। बहरहाल तो हुआ यही कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बदर के मकाम पे गए, वहां पे सारी लड़ाई वगैरह हुई, एक दो तीन दिन फिर कयाम भी करते थे नबी अलैहिस्सलाम। तो जिस दिन बदर में मुसलमानों को फतह हुई थी, उसी वक्त जो है ना फिर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल भी हो गया, ठीक है। और जब मुसलमान वापस आए तो उस वक्त रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफन दफन से फारिग हुए थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला जब नबी अलैहिस्सलाम वापस आए। जी
लेकिन तो मिलेगा तो उनको
बद्री सहाबा के नामों के अंदर तो उनका नाम नहीं आता, लेकिन फजीलत तो उनको डेफिनेटली मिलेगी ना। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था कि तुम्हें सवाब भी मिलेगा, बल्कि अगर लड़ाई हुई और उसमें माले गनीमत हमारे हाथ आए, तुम्हें माले गनीमत में से भी हिस्सा मिले, ठीक है। तो एबसेंटी, राइट, एबसेंटी के साथ जो है वो सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो फिर ये फजीलत वाली कौन सी चीज हो गई फिर? सही है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी खुशी भी मिली कि पहली फतह जो है मुशरिकीन मक्का के खिलाफ हासिल हुई, लेकिन साथ साथ जो है वो अपनी बेटी के वफात की ये खबर भी सुननी पड़ी। अच्छा, उमर रजान, अच्छा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो एक बड़ा दिलचस्प फिर वाकया पेश आया कि उस्मान गनी तरान की उस वक्त एक ही अहलिया थी, तो उनका इंतकाल हो गया, तो अब जो है वो फिक्र हुई कि भाई इनकी अब दूसरी शादी किसी के साथ करनी चाहिए। तो उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी बेटी जो हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, ठीक है, तो वो भी उस वक्त जो है ना बेवा हो चुकी थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। तो मैं खुद अपनी बेटी के लिए जो है वो रिश्ता तलाश कर रहा था कि तो मैंने देखा कि उस्मान जो है वो तो उस वक्त जाहिर है उनको जरूरत है कि भी वो शादी करें, तो मैंने जो है ना वो खुद आगे बढ़ करके उस्मान से कहा कि उस्मान आप मेरी बेटी से शादी। हालांकि उमूमन जो है वो ऐसा नहीं होता, लड़कों वालों की तरफ से पैगाम जाता है, लेकिन अरब मुआशरे के अंदर इस चीज को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता था, और अभी भी ऐसे ही होना चाहिए कि इवन लड़की वाली भी जो है ना वो कभी मुनासिब समझ करके जो है वो पैगाम भेज सकते हैं। तो उमर रजी अल्लाह तआला जैसे सहाबी है और कैसे उनका मुकाम मर्तबा और उनका जाहो जलाल था, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला को जाकर के कहा कि मेरी बेटी हफ्सा से जो है ना वो आप निकाह क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि मैं सोचूंगा, ठीक है, अनजरू फी अमरी, मैं इस मामले में सोचूंगा, गौर करूंगा, फिर जवाब दूंगा। अब जो है उस्मान अतान जो है वो जवाब ही कोई नहीं दे रहे, तो उमर अतान जो है ना उन्होंने कहा कि सोचा कि भाई ये क्या, क्योंकि तो मैंने आगे बढ़ करके जो है ना रिश्ता पेश किया और उस्मान साहब जो है वो तो चुप हो करके रह गए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो उनको भी जरा बुरा लगा कि उस्मान ने कोई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो वो ना जैसे कि कल भी बात हुई थी, वो कल की इतनी सारी बातें आ रही हैं, उमर अतान तो थे माशाल्लाह, ठीक है, सही थे नबी अलैहिस्सलाम के और अल्लाह के, ठीक है। तो वो पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास, नबी अलैहिस्सलाम ये देखें उस्मान क्या कर रहे हैं, मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता उनको दे दिया और वो जो है जवाब ही नहीं दे रहे, चुप होकर के बैठ गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अजीब जवाब दिया जो कि उमर रजी अल्लाह को भी समझ में नहीं आया। सही कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि उमर तुम फिक्र ना करो, उस्मान को अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी से भी अच्छी बीवी अता फरमाए, ठीक है, और तुम्हारी बेटी को उस्मान से भी अच्छा शौहर अता फरमाएंगे। अजीब मैथमेटिकल रिडल, राइट। तो उमर रजान फरमाते हैं कि जी मेरे तो समय होता ना चक्कर चकरा गया, क्या कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम कि उस्मान को चलो ठीक है वो, लेकिन मेरी बेटी को कैसे जो है वो, बहरहाल समझ में नहीं आया मेरे, मैं चला गया मतलब खामोश होकर के। बाद में जो है वो
अच्छा
नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी बेटी उम्मे कुलथूम रजी अल्लाह ताला अन्हा को तुम्हारे निकाह में पेश कर दिया है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है उम्मे कुलथूम की शादी तुम्हारे साथ कर दी जाए। तो फिर जो है ना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अब मेरे समझ में आया कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम की बेटी मेरी बेटी, जाहिर है वो ज्यादा अफजल है। तो ये आधी बात तो मुझे समझ में आ गई इस वक्त, लेकिन दूसरी आधी जो है ना वो अभी भी मेरे समझ में नहीं है कि मेरी बेटी को जो है उस्मान से अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है। इस वक्त तो सबसे बेहतरीन हर लिहाज से, दीनी भी दुनियावी भी लिहाज से उस्मान गनी तआला है, तो उनसे अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है। तो फरमाते हैं कि उसके बाद जो है ना, जब नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी बेटी के लिए पैगाम भेजा कि हफ्सा से जो है ना वो मैंने शादी करनी है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे इस तरह की चीज, तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो तो उस्मान गनी अतान से बदरजहां ऊला हैं। ठीक है, तो उस्मान गनी अतान को फिर जुन्नौरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। ठीक है, दो नूरों वाले, एक नूर रुकैया रजी अल्लाह तआला अनहा और एक नूर जो है वो उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अनहा। तो यानी इंसान की जो बेटी होती है ना उसका इंतहाई अहम मुकाम होता है उसके लिए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम अगर वो बरेलियों वाला नूर नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो नूर है हमारे लिए, तो हिदायत का नूर नबी अलैहिस्सलाम है, तो उस नूर में से बेटियों को भी हिस्सा मिला। ठीक है ना, जब भी तो उस्मान गनी अतान को जुन्नौरैन कहा गया ना, दो नूरों वाले, अब्बा के नूर में से बेटियों को भी हिस्सा, अब्बा की भलाई में से बेटियों को भी हिस्सा मिलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी बात आज की क्लास के लिए यहां तक फरमाया कि लौ अन्नली अरबईना बिन्तन, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती है ना, मैं एक के बाद एक, एक के बाद एक उस्मान से उनका निकाह कर देता। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर दो बहनें एक निकाह में जमा नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एक बेटी का इंतकाल होता, मैं अगली बेटी का की शादी करता, उसका इंतकाल होता, फिर मैं उसकी अगली की शादी करता, उसका इंतकाल होता, मैं अगली की शादी करता। ठीक है, तो 40 बेटियां उस्मान मैं तुम्हारी निगाह में पेश कर देता। इससे मालूम होता है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को क्या मुकाम अल्लाह तआला ने अता फरमाया था। ये हमारे लिए हिदायत के चिराग हैं सहाबा कराम। सही है, तो हमें अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे रखा है, जिस सहाबी से हमें ज्यादा मुनासबत है, हमें चाहिए कि हम अपनी मुनासबत को और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ लोगों की तबीयत अबू बकर सिद्दीक रतान जैसी होती है, कुछ लोगों की तबीयत उमर फारूक रतान की जैसी होती है, कुछ की तबीयत उस्मान रतान की जैसी होती है। हमारा काम यह है कि हम इन सितारों को, वो वाली हदीस, बल्कि इस हदीस की थोड़े से ज़ौफ़ के बारे में काफी कलाम है कि शायद ये ज़ौफ़ नहीं बल्कि है भी नहीं हदीस, लेकिन ऐसा नहीं है,
करते
हसन दर्जे में है, तो जो भी है मुख्तलिफ भी है, तो इसके बारे में हदीसों के, लेकिन बहरहाल असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा जो है ना वो सितारों की मानिंद है, तुम इनमें से जिसकी भी इत्तबा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। ठीक है, बहरहाल अगर ये हदीस नहीं भी होती तो भी जो उसूल है कुरान मजीद और हदीस मुबारक से साबित है वही काफी है हमारे लिए। ठीक है, सहाबा तो है नजूम के जैसे, तो अल्लाह में भी इनकी इत्तबा कामिल तरीन तौर पे करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।